रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा आने दो, थोड़ी आवाजें।
आज है 24 फरवरी दिन बुधवार। खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें भारती जोशी का। एक नजर कार्यक्रम की खास खबरों पर। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में केपी ओली को झटका, अदालत ने प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का दिया आदेश। अदालत ने मंजूर की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत, कहा सरकार से असहमति राजद्रोह नहीं। फेसबुक हटाएगा ऑस्ट्रेलिया में खबरों पर लगाई गई रोक। रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहें बुलेटिन में भारती जोशी के साथ।
आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्वसनीय आवाजें।
आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। नेपाल में महीनों से जारी राजनीतिक संकट और सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर की खींचातानी के बीच मंगलवार को वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा भंग करने को असंवैधानिक करार दिया है। एक रिपोर्ट के साथ है हमारे सहयोगी शादाब हसन खान।
नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तय समय से पहले चुनाव तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को झटका देते हुए संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जेबीआर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 275 सदस्यों वाले संसद के निचले सदन को भंग करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने नेपाली संसद को भंग करने के प्रधानमंत्री के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार को अगले 13 दिनों के भीतर सदन का सत्र बुलाने का आदेश दिया है। बीते दिनों नेपाल उस समय सियासी संकट में घिर गया था जब प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 20 दिसंबर को संसद की प्रतिनिधि सभा को भंग कर 30 अप्रैल और 10 मई को नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की थी। यूएमएल और नेकपा माओवादी के एकीकरण से बनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी के भीतर लंबे समय से मौजूदा प्रधानमंत्री ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश के लिए दलील दी थी कि वह सदन में 64% बहुमत रखते हैं और नई सरकार के गठन की कोई संभावना नहीं है और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए देश को लोगों के नए जनादेश की जरूरत है। ओली के इस फैसले का पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाले धड़े ने विरोध किया था। प्रचंड प्रधानमंत्री ओली के साथ सत्ताधारी दल के सह अध्यक्ष भी हैं। पिछले महीने प्रचंड के नेतृत्व वाले एनसीपी के धड़े ने प्रधानमंत्री ओली को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता से हटा दिया था। निचले सदन को भंग किए जाने के बाद पार्टी बट गई और ओली और प्रचंड दोनों के ही नेतृत्व वाले धड़ों ने निर्वाचन आयोग में अलग अलग आवेदन देकर अपने धड़े के वास्तविक एनसीपी होने का दावा किया और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित करने को कहा था।
रिपोर्ट सुना रहे थे शादाब हसन खान। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं भारती जोशी। अब रुख अगली खबर का। भारत में चल रहे किसान आंदोलन के लिए एक टूलकिट बनाने और उसे एडिट करने के आरोपों में हिरासत में ली गई पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। पुलिस ने दिशा रवि को किसान आंदोलन का टूलकिट बनाने वाली मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया था। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या किसी हानि ना पहुंचाने वाले टूलकिट का एडिटर होना कोई जुर्म है। कोर्ट ने यह भी कहा, मेरे ख्याल से नागरिक एक लोकतांत्रिक देश में सरकार पर नजर रखते हैं सिर्फ इसलिए कि वो राज्य की नीतियों से असहमत हैं। उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता। किसी पर राजद्रोह का आरोप महज इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि सरकार को उससे चोट पहुंची है। इधर दिशा रवि की गिरफ्तारी का व्यापक स्तर पर विरोध भी हुआ था। पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस गिरफ्तारी को उन लोगों के लिए एक चेतावनी बताया था जो कि किसी भी तरह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर एक्वाडोर में तीन जेलों में बड़े पैमाने पर हुए दंगों में तकरीबन 50 से ज्यादा कैदी मारे गए हैं और दर्जनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद वहां जेलों में हाई अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की देर रात तीन अलग अलग जेलों में प्रतिस्पर्धी गिरोह के बीच बंदूकों और चाकुओं से संघर्ष हुआ। अधिकारियों ने बताया कि तीन शहरों गुआयाकिल, क्वेंका और लेटाकुंगा की जेलों में कैदियों के बीच दंगे भड़क गए। उन्होंने जेल के गार्डों को बंधक बना लिया। पुलिस विभाग के कमांडर पैट्रिसियो कैरिलो ने मंगलवार को घटना के बारे में ट्वीट कर बताया कि उन जेलों में फिर से नियंत्रण पाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि जेल के बाहर एम्बुलेंस की कतारें देखी गईं और कैदियों के परिजन अपनों का हाल जानने के लिए जेल के बाहर देखे गए। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर खबरों को ब्लॉक कर देने के फैसले को वापस लेने की घोषणा की है। साथ ही उसने स्वीकारा है कि वह स्थानीय मीडिया कंपनियों को फेसबुक में शेयर किए गए उनके कंटेंट के लिए भुगतान करेगा। उसने यह घोषणा तब की जब ऑस्ट्रेलिया की सरकार उस प्रस्तावित कानून में बदलाव के लिए तैयार हो गई, जिसे लेकर बड़ी टेक कंपनियां विरोध जता रही थी। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक के मैनेजिंग डायरेक्टर विलस्टन ने कहा, सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसके बाद हम लोगों के हितों में पत्रकारिता को फिर से निवेश कर सकते हैं और आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया में न्यूज वाले पेजों को बहाल कर सकते हैं। नए बदलावों के मुताबिक यह फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही तय करेंगे कि उन पर कोई न्यूज चलेगी या नहीं, ताकि उन्हें जबरन कोई भुगतान न करना पड़े। ऑस्ट्रेलिया ने संसद में एक ऐसा कानून पास किया है जिसके मुताबिक फेसबुक और गूगल जैसी टेक्नोलॉजी की महारथी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर समाचार माध्यमों की ओर से प्रसारित की गई खबरों के लिए उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। इसका विरोध करते हुए फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक पर किसी भी तरह के समाचारों पर रोक लगा दी थी। इधर अमेरिकी कांग्रेस कैपिटल हिल में वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने 6 जनवरी को हुए दंगों के बारे में संसद के सामने एक पेशी के दौरान कहा है कि हथियारों, रेडियो और क्लाइंबिंग गियर्स के साथ लैस दंगाई युद्ध के लिए तैयार होकर पहुंचे थे। पूर्व कैपिटल पुलिस चीफ स्वीटेन सर्न ने कहा, यह एक इंटेलिजेंस फेलियर था जिसके चलते हम एक विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए तैयार थे, न कि किसी सेना की तरह एक सुनियोजित हमले से निपटने के लिए। पूर्व राष्ट्रपति की हालिया चुनाव में हार के बाद उनके समर्थकों ने 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटल पर चढ़ाई कर दी थी और अफरा तफरी मचाई थी। इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हुई थी। अब चलते चलते एक और खबर पर नजर। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संगठन IAEA ने फिर दावा किया है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को बढ़ा रहा है। IAEA का कहना है कि उनके निरीक्षकों ने इसकी पुष्टि की है। ईरान यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को बढ़ाने की शुरुआत कर चुका है। उसने 20% तक यूरेनियम का संवर्धन करना शुरू कर दिया है, जो कि दुनिया की शक्तियों के साथ 2015 के परमाणु समझौते के उल्लंघन का मामला है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने सदस्य देशों को वितरित एक गोपनीय दस्तावेज में यह सूचना दी है, जिसमें यह कहा गया है कि 16 फरवरी को ईरान ने 17.6 किलोग्राम यूरेनियम को अपने भंडार में 20% तक समृद्ध किया था। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टैप कर लें, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए भारती जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां जहां हमें सुन सकते हैं, khidki.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार।
रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा आने दो, थोड़ी आवाजें।